ज्ञानतिमिरन्धस्य गणञ्जनशलाकय सक्षुणितं जन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदगुणं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरौनितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसंहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगुणललिता श्रीशनितं च नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणीपचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महापदान्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठ नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपसर्पकं भक्तावतरणभक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकन्तो राधाकन्तो नमस्तुते। तप्त काञ्चनि गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज प्रातःकालीन सत्संग में आप लोग सबको हार्दिक स्वागतम है। आज प्रभुपाद जी के चित्र आए हैं। श्यामानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि, वंशी वदनानंद ठाकुर की आविर्भाव तिथि, बलराम रास एवं कृष्ण बसंत रास भगवान श्री कृष्ण की, ये चार चार फेस्टिवल है। तो वंशी वदनानंद ठाकुर जो है, ये नवद्वीप में इनकी कुलिया में इनके जन्म है। माधवदास या छाईकड़ी चक्रवर्ती इनके पिताजी है। जब चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लिए 1510 में, 1510 पे संन्यास लेके प्रभु गए जगन्नाथपुरी, फिर 2 साल तक दक्षिण भारत भ्रमण किए, फिर आकर वृंदावन जाने चाहे, लेकिन सार्वभौम रामानंद राय प्रताप रुद्र महाराज के प्रार्थना से 2-2 साल टालते रहे लोग, आज नहीं काल चलो, ऐसे करके करके 2 साल नहीं जा पाए। संन्यास लेने के 5वां साल 1515 में महाप्रभु बंगाल होकर वृंदावन आने चाह रहे थे, लेकिन समस्या ही हो गया कि भक्तों से तो मिला, लेकिन इतने लोग हो गए महाप्रभु जाने के लिए लाखों की संख्या हो गई उनके पीछे। इतने लोग आप लोग जानते हैं, 5000 की यात्रा लेके आने से कितना तकलीफ होते हैं, और वो जो एडवांस पार्टी है, ट्रैक गाड़ी सब कुछ था, कुछ नहीं है, पैदल फर्शा भी पैदल ही तक बैलगाड़ी भी नहीं है, उसका कैसे मेंटेन होगा। तो इसलिए महाप्रभु सनातन गोस्वामी बताया कि प्रभु जिसके साथ लाखों लोग है, ऐसे वृंदावन जाने का परिपाटी नहीं है, आप अकेला जाइए या साथ में या किसी को लेके जाइए। तब प्रभु फिर वापस गए। तो कुलिया नवद्वीप के एक पार्ट है, तो उसमें महाप्रभु के माधवदास के घर पे रहे। इसी समय बहुत भगवान है, 7 दिन तक महाप्रभु इनके घर पे थे माधवदास। इसी समय वंशीवदन ठाकुर की आविर्भाव तिथि आविर्भाव हो गया। ये जो पूर्णिमा के दिन मान लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे वृंदावन के ओर आ रहे थे, ऐसे लौट के माधवदास के घर पे गए, इसमें चैत्र पूर्णिमा के दिन इनके जन्म हुआ वंशी वदनानंद ठाकुर। इनके पूर्व इतिहास बताते ये वंशी की अवतार है, भगवान की जो बांसुरी है इनकी अवतार है वंशी वदनानंद ठाकुर। तो इसके और पूर्व इतिहास क्या है कि वंशी कैसे बने, इनमें एक देवदत्त नाम की एक ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी जैसे पावरफुल ब्राह्मण, बहुत तेजस्वी, लेकिन अवैष्णवों के बीच में इनके जन्म, जहां पर इनके जन्म हुआ था आसपास कोई ऐसे कोई वैष्णव नहीं थे, अवैष्णवों के बीच में। तभी एक दिन कोई लाके उनके ठाकुर जी के महाप्रसाद दिया, महाप्रसाद दिया तो ये भगवान की झूठा है, झूठन है, इसलिए वो थोड़ा अवज्ञा करके, मतलब इतना श्रद्धा के साथ उनको ग्रहण नहीं किया। इसके फल से इनको हमेशा झूठा करना पड़ेगा भगवान की झूठन। दूसरे जन्म में एक्चुअली पूरा वंशी तो नहीं है, वंशी में उनकी आवेश हुआ, वंशी में देवदत्त जो है देवव्रत, वो देवव्रत आके वंशी में दूसरे जन्म भगवान जब आए तो इसमें वंशी बाश बने, बाश से उसी वंशी बना भगवान के हाथ पे आए, और हमेशा भगवान के ठाकुर जी के झूठन खाना पड़ता है। तो ये वंशी वदन की ये है। तो इसके बाद जन्म होने के बाद जब महाप्रभु गए भाग्य क्रम में शची माता और विष्णु प्रिया की सेवा करने का मौका मिला, पानी लाना सभी व्यवस्था करना, तो इसलिए महापुरु के घर पे ईशान ठाकुर, ईशान और वंशीवदन और एक दामोदर पंडित, ये लोग सेवा के लिए महापुरु के साथ दामोदर पंडित गए थे। दामोदर पंडित जाके महापुरु की गलती पकड़ने लगे। महापुरु बोलते आमी तो सन्यासी, तुम्हें ब्रह्म दामोदर ब्रह्मचारी सदा रहे आमार ऊपर शिखा दंड धोरी। तो बोलते हैं मर्यादा का उल्लंघन, बोले मैं सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी है, हमेशा शिक्षा दंडो, प्रभु ये गलती हो गया, वो ठीक नहीं है, वो ठीक, ऐसे बोलते थे। महाप्रभु बोला तुम जाओ शची माँ और विष्णु भैया की सेवा करो, भेज दिए थे। ये तीन लोग रहते थे, तो वंशीवाद ठाकुर शची माता विष्णु प्रिया देवी की सेवा करते थे। इसी प्रकार एक बार जब महाप्रभु अंतर्धान हो गया, महापुरुष अंतर्धान होने के बाद दोनों बहुत रोने लगे, वंशीवदन ठाकुर और विष्णु प्रिया देवी, इससे पहले शची माता चली गई थी, तो दोनों इतने रोने लगे, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। वो कैसे, विष्णु प्रिया देवी कैसे खाते थे, क्या प्रसाद पाते थे जानते हैं, एक एक चावल की माला करते थे, एक एक नाम करके काउंटिंग करती थी, जितने चावल दिन भर जितना अच्छा है, जितने काउंट चांटिंग होगी उतने खाओगे, जितना ज्यादा चांटिंग ज्यादा खाओगे। तो जितने चावल होते हैं दोनों एक पात्र मिट्टी के पात्र दो इधर एक रखते थे, इधर खाली एक में चावल भरा है, एक एक लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक रखा है फिर दूसरा ऐसे ही, तो वो भी छोड़ दी। दोनों बहुत चिल्ला चिल्ला के रोते थे हमेशा, और तब महाप्रभु आके दोनों को स्वप्न आदेश किए, मैं जो नीम वृक्ष के नीचे जन्म लिया उसको काटो और उससे एक विग्रह बनाओ और उसमें मैं प्रवेश करूंगा। तब से महाप्रभु की आज्ञा से वंशीवदन दोनों स्वप्न देखे, विष्णु प्रिया देवी वंशीवदन ठाकुर। फिर उसने दूसरे दिन उसको काटा, काटकर जो बनाने वाले कारपेंटर है, 15 दिन में महाप्रभु के सुंदर विग्रह बन गए, और सभी ब्राह्मणों लोग बुला के उनकी बहुत भव्य रूप से उनकी प्रतिष्ठा उत्सव मनाए। इसी प्रकार वंशीवदन ठाकुर और विष्णु प्रिया देवी इस श्री विग्रह की सेवा करते। अभी कहां पे है विग्रह, अभी धामेश्वर महापुरु के नाम से नवद्वीप में महापुरु बारी बोलते हैं इसको, महापुरु के घर बोलते हैं, वो प्रसिद्ध है जानकर, अभी भी वो श्री विग्रह है, तो साक्षात महापुरु जी है, उनके सेवा करते थे हमेशा वंशीवदन ठाकुर, उस विग्रह की सेवा करते थे, और विष्णु प्रिया देवी की सेवा आदि करते थे, और वो गृहस्थ बन गए थे। इसी प्रकार उसमें वर्णन है, इसमें एक दंड है कि महाप्रभु के चरण में तुलसी दे या ना दे, तो उसमें स्पष्ट वर्णन है कि वो तुलसी महाप्रभु के चरण में लगाते थे। बंशी शिक्षा एक इतनी बड़ी किताब है, उसमें वर्णन है कि वो जब सेवा करते थे तुलसी चंदन चंदन महाप्रभु के चरण कमल में निवेदन करते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु की सेवा किया। महाप्रभु पहले उनको बता के गए थे कि बंशी तुम आप कुछ दिन पर आप लीला संवरण करना। इसी प्रकार वो भूल गया था। फिर महाप्रभु उनके सपने में आए, सपने में आके बताया तुम भूल गए हो। तो बंशी एक अच्छी बात बताता है कि अपने जो हम लोग भूल जाते हैं लेकिन प्रभु नहीं भूलते हैं। हम संसार मूल के सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन प्रभु ने याद करा दिया। बंशी तुमको तो जाना है। तब इन्होंने विचार किया, बस इच्छा के जाने के तुरंत चल दिया। इस प्रकार बंशीनंद बंशीवदन के लिए ज्यादा कोई वर्णन कहीं पर नहीं मिलते हैं। तो ये बंशीवदन ठाकुर है, ये बंशी के अवतार है। चैतन्य लीला में जो भी चैतन्य महाप्रभु के परिकार है, ये कृष्ण लीला में किसी ना कोई कोई ना कोई लीला में उनके भाग थे। तो ये बंशी है, भगवान की बंशी ऐसे जर नहीं होते हैं। तो ये एक सखी उनके नाम भी है, वही बंशी के रूप में है। तो ये बंशी के अवतार बंशीवदन ठाकुर हैं। और इसके बाद श्यामानंद प्रभु के आज आविर्भाव, चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो बड़े प्रसिद्ध तीन वैष्णव, उनके पिताजी मेदिनीपुर, पहले ये स्थान उड़ीसा में था, अभी स्थान बांग्ला में धारंदा, धारंदा में इनका जन्म है। पहले ये उड़ीसा में था मेदिनीपुर, अभी बंगाल में है। तो उनके पिताजी नाम कृष्ण मंडल, माताजी का नाम दुरिका है। बड़े सद भावनापन्न वैष्णव, गोप जाति ग्वाला थे, सद गोप थे। तो बहुत से संतान जन्म लेते थे, पुत्र कन्या जन्म लेने के बाद मर जाते थे। इसके लिए बहुत 7-8 बच्चे ऐसे मर जाने के बाद इनका जन्म हुआ। जन्म के बाद माँ ने नाम रख दिया दुखिया नाम रख दिया। तो दुखिया बचपन से बच्चे का खेल में खेलते थे। इसी प्रकार धीरे धीरे बड़े हो गए तो उनको पढ़ने के लिए एडमिशन कर दिया, पढ़ाई किए। और गांव में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में कीर्तन होता था, गांव उनकी कथा होती थी। इस कथा में वो सुनते थे महाप्रभु के बारे में। महाप्रभु के बारे में सुने, थोड़ा बड़े हो गए बच्चे। इसी समय बताया, पिताजी बताया कि आप दीक्षा ले लो। तो इसी कथा में उन्होंने सुने थे हृदय चैतन्य के बारे में। गौरीदास पंडित कालना में, गौरीदास पंडित की गौरणीताई बड़े प्रसिद्ध है। उन गौरणीताई जो महापुरुष साक्षात महापुरुष है, चार दो विग्रह गौरणीताई और दो जो महापुरुष और नित्यानंद प्रभु, ये चार एक साथ में प्रसाद पाए थे। दो विग्रह दो प्रभु, ये चार प्रभु एक ही साथ में बैठ के प्रसाद पाए थे। तीस गौरणीदाय के प्रेम से सेवा करते थे। तो हृदय चैतन्य के हृदय में, चैतन्य दास के हृदय में महाप्रभु प्रवेश कर दिया, प्रवेश किए। तो इसके बाद नाम क्या हो गया? हृदय चैतन्य। गौरीदास पंडित एक बार भोग लगाया, देखा दोनों भाग गए। हृदय चैतन्य दास कीर्तन कर रहे थे, वो फेस्टिवल मना रहे थे, गौरव ने भगा दिया। गुरुदेव बोला मेरा बिना परमिशन तो मना रहे चलो। तो उधर भोग बनाया के भोग लगा के गया तो ठाकुरी है नहीं, भाग गए। तो डंडा लेके, वो सख भाव की भक्त है गौरीदास, सुवल सखा है, तो चलता है सब मित्रता के बीच में डंडा भी चलता है, थप्पड़ डंडे चले। तो ऐसे है डंडा लेके भागा, जिसमें डर के नित्यानंद तो भाग गया, महाप्रभु नहीं छुप पाया तो हृदय चैतन्य दास के हृदय में प्रवेश कर गया। इसलिए इसी बात को जब श्यामानंद को पता चला दुखिया को तो उन्होंने बताया कि मैं हृदय चैतन्य से ही दीक्षा लूंगा। तो बोले तो बहुत दूर है, अब कैसे जाओगे? तो इसमें गांव के लोग, कुछ लोग गंगा स्नान या नवद्वीप धाम दर्शन के लिए आ रहे थे, इसके साथ में दुखिया आए, आके खाना कुल कृष्णनगर अविराम ठाकुर के श्रीपाठ दर्शन किए। इसके बाद धीरे धीरे कालना आ गए, कालना में आके शाम रात को पहुंचे, कोई व्यवस्था नहीं, उधर ही सोया रहा मंदिर में, टेंपल हॉल में सोए रहे। सुबह सुबह जब चैतन्य दास आए ठाकुर जी की सेवा के लिए, तभी उन्होंने प्रणाम किया और अनुकूल भाव से ही पे रहे, तो सेवा करते रहे, सेवा करते रहे। तो अच्छे लड़के हैं, रोते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, इसको देखकर प्रसाद भी देने लगे। एक्चुअली हमें ज्यादा, हम पीछे पड़ जाते हैं, तो इसलिए भगवान व्यवस्था कर देते हैं कोई भी। तो वो किसी के पास नहीं गए, वो सेवा करते रहे, भगवान ठाकुर जी के दर्शन करते रहे, कीर्तन करते रहे, रोते रहे, सेवा करते रहे। तो देख अच्छा लड़का है, ये कोई नहीं जा रहा है, इधर ही रह रहा है, दिन को इधर ही रहते, साफ सफाई करते, कीर्तन करते, ये करते, इधर ही सो जाते। तो सभी आदर करने लगे, प्रसाद आदि दिए, प्रसाद पाए, तो धीरे 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 उनकी हुआ हृदय चैतन्य। जिन पूछने लगे, बच्चा बच्चा कहाँ से आए हो, कहाँ घर है? तो सब पूछे। एक दिन उन्होंने इसके अच्छे देखकर व्यवस्था भी कर दिया, रहने लगे, इसको उनको सेवा में दीक्षा दे दी, हरिनाम, हरिनाम दीक्षा दे दिया, हरिनाम दीक्षा दी, हरिनाम दीक्षा लिए और उधर गुरु जी के पास रहने लगे, ठाकुर जी का सेवा करने लगे। एक फूल की बगीचा में पानी देते थे, गंगा दूर से जल लाते 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 लाते। ऐसे श्यामानंद प्रभु की सेवा की जो निष्ठा है, ये बहुत बढ़िया। सेवा आप कौन सा कर रहे हैं, ये बात, ये बड़ी बात नहीं है, सेवा कितनी निष्ठा के साथ आप सेवा करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने गार्डन में पानी लाते 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 उनकी यहाँ मटके या कोई बर्तन सी यहाँ लाल लाल आकर उनके कीड़े पड़ गए, घाव हो गए, कीड़े पड़ गए, फिर भी गुरुजी को नहीं बोलते हैं कि मेरा इतना तकलीफ है, वो फिर भी पानी लाते हैं। तो गुरुजी देखे तो उनको दवाई वगैरह किए, तो इसे बहुत खुश हो गए। ऐसे होते थे, बहुत दिन बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं और गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने की उनकी मन में इच्छा हुई। गुरुजी का गुरुजी से आज्ञा लेकर श्यामानंद भक्तों के साथ, पहले आना भी बहुत तकलीफ होता था, पैदल पैदल आने पड़ते थे, रोड नहीं था, पुल नहीं था कोई, तो ऐसे तकलीफ से आए, आकर दर्शन किए, दर्शन करके जीव गोस्वामी के पास उनके इधर रहे। तीन प्रभु, तीन प्रभु है, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। तिनका नाम दीक्षा दीक्षा देके दुखी कृष्णदास हो गया था, हृदय चैतन्य जी नाम दिए दुखी कृष्णदास। तो ये कृष्णदास, ये तीन भक्तों मिले एक साथ में, जीव गोस्वामी गोस्वामी ग्रंथ आदि अध्ययन कराते थे और अलग अलग सेवा में नियुक्त किए। उन्होंने कुंज में झाड़ू लगाने के लिए, तो उनकी सेवा निष्ठा था देखकर राधारण श्री जी राधारण की कृपा हो गई। वृंदावन की सेवा, कोई भी सेवा साधारण नहीं होती है, कुंज की सेवा। हम लोग किसी को भी देगा, हम लोग नहीं झाड़ू लगाना सेवा कैसे कर सकते हैं हमों को। जिससे राधारण की कृपा हो गई, नूपुर मिले, उनके पायल मिले तो दर्शन हो गए। इसी प्रकार श्यामानंद कुछ दिन, सभी तीनों का एक इच्छा यही था कि हम उनके नाम भी परिवर्तन हो गया, श्यामानंद नाम हो गया कृष्णदास से। तीसरे प्रकार इसको लेकर बहुत बड़ा यह हो गया, तिलक परिवर्तन हो गया। जब उनको खबर मिला हृदय चैतन्य को, जीव गोस्वामी के नाम में एक आरोप लग गया कि मेरे शिष्य है, कैसे उन्होंने परिवर्तन कर दिया। 64 महंत आए, अभी 64 महंत की समाधि है, उधर बैठे थे 64 महंत। 64 महंत कौन है? कृष्णलीला में कौन है? 64 महंत है कि 8 सखी है, 8 सखी की 8 मंजरी है, ये आठ चौसठ मंजरी चैतन्य महापुरुष की लीला में आए थे, यही चौसठ महंत है। ये कोई साधारण जीव नहीं है, चौसठ महंत आए इधर बैठे मीटिंग किए। तो उनको पूछा गया, पूछने के बाद उन्होंने बताया आप ही ने तो दिया है तिलक, तिलक भी दिया नाम भी दिया। इसके बाद बताया कि ठीक है मैं दिया तो तिलक मिटाया जाएगा और श्यामानंद नाम लिख के आपके शरीर में मिटा दिया जाएगा। तो पानी लाए, पानी ढालते ढालते ये करके मिटाते मिटाते और जितना मिटाने चाहते उतना उज्जवल होते हैं। तो नाम भी नहीं मिटा और तिलक भी नहीं मिटा। इसी प्रकार इस समय पता चलता है कि हमें तिलक भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी हमें जो तिलक दिया इससे हमें खुश रहना चाहिए, हमें तिलक भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। देखिए तिलक परिवर्तन कर दिया कितने बार ये हो गया, 64 महंत बंगाल से चल चल के आ गए, बड़ी मीटिंग हुई। इसी प्रकार तो उनको सभी लोग पता चल गया, समानंद भी खुश, हृदय चैतन्य भी खुश हो गए समानंद। इसके बाद ये जो 64 महंत ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे थे, तो परिक्रमा कर रहे थे इसी समय समानंद भी साथ में थे। तो इस समय एक राष्ट्रस्थली जहां राष करते भगवान इस स्थली में आकर सभी इस स्थली का वर्णन करते, समानंद में भाव आ गया, शरीर में कपड़े लगा के सखी मंजरी जैसे नृत्य कर रही थी। तो श्यामानंद ने नाराज हो गया, बोला हम लोग कृष्ण के भाव के है, शक्कर रस की है, गौरीदास पंडित शक्कर रस की है, उनके शिष्य हृदय चेतना शक्कर रस की है, इसलिए बोले तू राधारानी के भाव के लिए, हम तो कृष्ण भाव के है, कृष्ण के साइड के है, शक्कर भाव के है। तो एक थापर मार आप तेजी से खून निकल गए, उनके कान से खून निकल गए। तो और वो छोड़ के चले आए, उधर ही रहे, लेकिन कोई रुष्ट भाव नहीं है गुरुजी के प्रति। फिर रात को जब हृदय चैतन्य सोया हुआ है नींद में गए तो देखा कालना की महाप्रभु की उत्तरी से खून दिखाई दे रहा है। हृदय चैतन्य डर गया, तुरंत नींद से उठे और रोने लगे कि ये प्रभु ये क्या है, कैसे आपको दशा कर दिया। महाप्रभु बहुत क्रोधित होकर बोलता है तू नहीं जानता है, तू ही तो किया है ऐसे, तू समानंद के मारा, समानंद और मेरे शरीर एक है, तो समानंद के मारा उसको चोट कहां जाएगा। मेरे कान से खून निकाल गया, वही खून उतरे में लगा है। तभी बहुत दुखी हो गया, महाप्रभु के चरण में समय याचना किया। समानंद के पास वो नाराज नहीं हुआ, समानंद गुरु है, गुरु कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो समय याचना किया और वैष्णव लोगों से बोला ये जो अपराध है ये अपराध से क्या करना चाहिए। बोला द्वादश महोत्सव करना है, 12 महोत्सव करना है, मतलब वैष्णव लोगों को 12 बार फेस्टिवल करके, एक निमंत्रण में नहीं 12 निमंत्रण करना है। इससे तो कोई गलती वगैरह हो गया तो वैष्णव क्या करना है, वैष्णव भजन करना है, आनंद दिलाना है सबको, जो नाराज हो उसको भी बुला के लाना है, चरण पकड़ के खिलाना है। तो द्वादश महोत्सव समानंद प्रभु को जब पता चला, गुरुजी से निवेदन किया, प्रभु गुरुजी हमें आज्ञा दे दीजिए, मैं इस उत्सव की व्यवस्था करता हूं। तो परिक्रमा छोड़ के आ गए मथुरा से भिक्षा मांग के द्वादश महोत्सव। अभी भी आप जाएंगे गोपीनाथ मंदिर, खीरचोर गोपीनाथ मंदिर रेमुना में, गोपी वल्लभपुर में अभी भी द्वादश महोत्सव होता है, इसके लिए द्वादश महोत्सव हुआ। तो ये तीनों चाहते थे कि हम लोग, और ये तीन कौन है, तीन चैत अद्वैत आचार्य, एक बार मायावाद प्रकाश प्रचार किया था, महाप्रभु थप्पड़ मारा उनको ठीक रास्ते में आ गए, फिर एक बार मायावाद प्रचार कर रहे थे, महाप्रभु तब थे जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु को पत्र भेजा कि ऐसे अद्वैत तो फिर मायावाद के प्रचार कर रहे हैं। तो महाप्रभु समझ गया कि अद्वैत आचार्य जो चाहते थे और कुछ दिन ये प्रेम रहे, क्योंकि जानते थे महाप्रभु चले जाने के बाद प्रेम चला जाएगा, और कुछ दिन प्रेम रखने के लिए अधिचंद ने फिर दोबारा मायावाद प्रकाश किया। इसलिए महाप्रभु के प्रेम अवतार है, शक्तावेश अवतार है, प्रेम अवतार श्रीनिवास, नित्यानंद के आवेश अवतार है नरोत्तम दास ठाकुर, अद्वैत आचार्य जी का आवेश अवतार है श्यामानंद प्रभु। ये तीन कोई साधारण नहीं है। तीनों की इच्छा वृंदावन में रहकर इधर प्रचार करने के लिए। एक्चुअली बंगाल में ये सहजीय बात फैल गया, इसका कारण यही है, कोई भी आते थे वापस नहीं जाते थे। जो भी वृंदावन आके भजन करते थे, गोस्वामी लोग, श्री विश्वनाथ चक्र, जो भी है, जितने वैष्णव उस परंपरा से आए, एक बार जब ब्रजराज लग गया वो और कोई बंगाल नहीं जाने चाहते। इसी की सुजो को लेकर जो सहजीय लोग है वो बहुत फैल गया बंगाल में। तो इसी पर जानी नहीं चाह रहे थे, लेकिन जीव गोस्वामी ने बताया कि देखो तुम लोग जाओ, ये गोस्वामी ग्रंथ हो, तुम लेके जाओ इसको और भी कॉपी करो और इसको प्रचार करो, नहीं तो कैसी ये ग्रंथ नहीं रहेगा। ये ब्रज में ये एक्चुअली संस्कृत भाषा तो थी, लेकिन लिपि जो है वो बंगाली लिपि थी। तो सुरक्षा करने के लिए ग्रंथ गाड़ी भरकर उनको भेज दिए। श्यामानंद प्रभु जब जाते जाते धवलपुर में जब गए, एक राजा थे बहुत बड़ा बदमाश, वो क्या करते, उनके पास एक मुंडिया चंडी रंकिनी देवी थी, और कोई भी उसी से गुजारते थे उसको बड़े आदर करके वो ले जाते थे। लेकर ये देवी मंदिर के पास पे कमरा होता था, और उसके कोई खिड़की वगैरह नहीं है, उसमें बंद करके रखते थे, बंद करके और देवी को बोलते थे खा जाओ, देवी को क्या बोलते थे खा जाओ, और इसको बंद करके बाहर से लग कर देते थे, बड़े आदर करके लेते थे ऐसे। लेकिन आज तो पल्ला बहुत भारी हो गई, आज वैष्णव है कौन, श्यामानंद प्रभु, इसको देवी खा जाएगी। तो बाद में इनको बंद करके रखा, श्यामानंद बोलते हैं वैष्णव लोगों को, और जो उनके साथ में थे वो बोलते बहुत अच्छी बात है, आज तो कोई निर्जन स्थान है, भजन में बहुत अच्छा है, अभी ये भजन करो। भजन करते रहे, रात को देवी आ गई, आके समय याचना करने लगी, देवी के शरीर में दर्द होने लगा, तो इसी आके समय याचना कर, प्रभु हमें आप रक्षा करो, ऐसे ऐसे है, ये ऐसे दुष्ट ने अपने आपको रख दिया। तो इसी प्रकार जब बोले, फिर देवी गए राजा के पास, स्वप्न में जाके बताते हैं, हे राजा तू क्या किया, तू इसके पास समय याचना कर, नहीं तो तेरे को पताल कर, ये जो काटने में खाया ना तेरे को ही खा जाऊंगी। यही देवी का उपासना किया है। और भगवान पुतना को क्या स्थान दिया, जितने भी राक्षस है सभी राक्षस परम गति, ये भगवत भक्ति है और देवी भक्ति, तुरंत कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक तो आध्यात्मिक फल तो कुछ नहीं मिलने वाला, साधारण कुछ भौतिक फल मिलेगा, और कुछ भी से थोड़ा सा इधर हो गया तो बस अपने वंश नाश हो जाएगा पूरा। तो बहुत नाराज हो गई, बोले जल्दी जल्दी समय याचना कर, नहीं तो तेरे को मैं खा जाऊंगी। ऐसे बोले डर गए राजा, पूरा परिवार लेके जहां श्यामानंद प्रभु थे, दरवाजा खोला ही नहीं वैष्णव लोग। तो सुबह सुबह जब हो गया, अलार्म जब बज गया, मुर्गा जो है ना, मुर्गा वो आवाज करते हैं 4 बजे, आवाज किए तो बोले चलो अभी ये गांव में नहीं रहूंगा। और श्यामानंद उनके शिष्यों को बोला, उनके साथ में तो उनको बोला कि कपड़े लगा दो, उसको मुख मैं नहीं देखना चाहता हूं मैं। वो तो बहुत गिर गिर आ रहे थे, दरवाजा खोले उनके चरण में गिरने लगे, श्यामानंद प्रभु बिल्कुल करोक हो गए, उसको देखने ही नहीं चाहते बिल्कुल, एक कपड़े लगा दिया, श्यामानंद प्रभु जा रहे हैं उसको कपड़े लगा हुआ है, उसको देखने दर्शन ही नहीं दे। फिर भी पीछे 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 गिर गिराते गए। बहुत दूर जाने के बाद सुवर्ण रेखा के तट पे जाके एक आम की बगीचा में विश्राम किया, फिर भी गिर गिराते रहे, वैष्णव दयालु होते हैं। फिर उन्होंने शिकार किया और बहुत उनका व्यवस्था कर दिया, उधर भंडारा आदि हो गया, इसके बाद उनको शिष्य बना दिए। इसी प्रकार श्यामानंद प्रभु उनको आदेश था कि आप जाके दक्षिण दक्षिण की ओर जो उड़ीसा और दक्षिण बंगाल इधर आप प्रचार करो। तो रेमुना में आप लोग देखेंगे जो भी है ये सभी श्यामानंद वैष्णव लोग हैं, पुराने जो वैष्णव हैं। तो श्यामानंद प्रभु उधर धीरे 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 ऐसे जाके धीरे धीरे प्रचार करने लगे। और रसिक मुरारी जी उनके प्रधान शिष्य है, वो एक शुद्ध वैष्णव गुरु के लिए तलाश में थे। इसलिए उनको सपने आदेश हुआ, आपको जाना जरूरत नहीं है, गुरु यही आएंगे। तो श्यामानंद प्रभु गए तो उनको पता चला, उनको भी तो उन्होंने जाके उनके शरण में गए। तो श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद और रसिक मुरारी हो गए। इस प्रकार दोनों ये वो जो क्षेत्र है बहुत ही तामोशिक क्षेत्र थे, उसी क्षेत्रों को उन्होंने एक सुंदर वैष्णव क्षेत्र बना दिया। उन्होंने धीरे 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 प्रचार प्रारंभ किया। और जगन्नाथपुरी जाते थे, जगन्नाथपुरी जाते जाते एक बार उनको सपनों एक दो व्यक्ति जो मूर्ति बनाते उनको सपना आदेश हुआ कि जाओ श्यामानंद इधर बार बार आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होते हैं, तो आप जाओ। दो शिलाखंड भी लेके आया, शिलाखंड जगन्नाथ के आज्ञा से दो शिलाखंड मिला। दो शिलाखंड लेकर जगन्नाथपुरी से दो विग्रह बनाने वाले कारीगर जो है वो आ गए, विग्रह लेकर श्यामानंद से परिचय हुआ और बताए कि ऐसे जगन्नाथ जी की आज्ञा है। तो राधा गोविंद राधा रानी और गोविंद देव की सुंदर श्री विग्रह बनाया। अभी भी गोपीवल्लभपुर में आप लोग जाएंगे, बहुत सुंदर रमणीय स्थान है गोपीवल्लभपुर, सुवर्ण रेखा नदी के तट पे उनकी जो स्थान है, इधर ही उनको आज्ञा हुआ था। गोपीवल्लभपुर में एक शिव जी थे काशीनाथ, उनको प्रार्थना किया दूसरे जगह, श्यामानंद के प्रार्थना से दूसरे का उनको स्थापित कर दिया। और गोपीवल्लभपुर में उनकी जो श्रीपाठ उनकी जो मंदिर मेन मंदिर जो है वो गोपीवल्लभपुर में बनाए। राधा गोविंद जी जगन्नाथ जी है, बहुत सुंदर स्थान है। तो ऐसी उनकी ख्याति फैल गए। तो एक बार एक बादशाह एक फकीर उनकी ख्याति सुना तो वो भी उसका कुछ सिद्धि थे, तो वो क्या है शेर की सवारी होकर श्यामानंद से मिलने आ रहे थे, शेर सवारी। तो श्यामानंद प्रभु को कोई आके बता रहा है ऐसे कोई फकीर आ रहे हैं आपके साथ मिलने के लिए शेर सवारी होकर। तो श्यामानंद प्रभु उनको एक उद्धाप एक शिष्य थे उनको श्यामानंद प्रभु बताया कि जा उनको स्वागत करने के लिए बोलो। वो एक दातुन घिस रहे थे एक दीवाल में, पुराना टूटा से एक दीवाल में खड़े बैठे बैठे दातुन घिस रहे थे। तो दीवाल को बोला चलो, तो दीवाल चलने लगा। अभी भी आप लोग जाएंगे सुवर्ण रेखा नदी पे, आपको उस दीवार जो है अभी भी मिलेगा। तभी जब वो उद्धाप वो दीवार के सवारी में चले तो शेर सवारी वाले चकित हो गया। ये तो उस मंत्र तंत्र वश करके शेर के ऊपर तो कोई चल सकते हैं, वो तो चलने वाले हैं, ताकत वाला भी होते हैं, कि मंत्र तंत्र की जरूरत है, बोले उसको वश करना है और कुछ नहीं। लेकिन जर को चेतन बना दिया। ऐसे सिद्ध महात्मा हुई बहुत, जैसे गणेश्वर अभी भी दीवाल महाराष्ट्र में है, जो दीवाल में चले थे दीवाल चलते थे, इसी प्रकार वो दीवार अभी भी सुवर्ण रेखा नदी। तभी जब उनको पता चला कि ऐसे है उनके वो श्यामानंद नहीं आया, श्यामानंद के डिसाइपल एक शिष्य आ गए, तो बोले वो कितना तेजयन होगा। तब इसी प्रकार उन्होंने तुरंत जब इनको उनको पता चला कि ऐसे आपको स्वागत करने के लिए देवाल में चढ़कर आ गया, तो वो तुरंत उसके शेर सवारी उतर के आकर उनको स्वागतम किया और वो आए श्यामानंद प्रभु के समय याचना किया। और जो भेजा था उस राजा काजी वो भी बहुत खुश होकर बहुत जमीन आदि उनको दान दिया। तीसरे प्रकार श्यामानंद प्रभु एक्चुअली वो गोपीबल्लभपुर हम लोग गए थे तो बोला बहुत जमीन था, लेकिन जमीन क्या हुआ जो कम्युनिस्ट था वो उसी समय जमीन ले लिया कम्युनिस्ट सरकार ने, तो वो इसी प्रकार उनकी ख्याति धीरे 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 श्यामानंद प्रभु की फैलते रहे। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने, बहुत दुष्ट लोगों को उन्होंने ऐसे उद्धार किया श्यामानंद प्रभु। और रसिकानंद प्रभु ऐसे हमेशा प्रचार करते थे। एक बार जगन्नाथ पुरी में जाते समय उनको देर हो गया तो रथ में हमें कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होगा। और जो बैतरणी नदी है, बैतरणी नदी में इतने लोग चढ़ गए तो बिल्कुल नाव डूबने वाले थे, तो भी सभी डरने लगे, सभी उछलने वाले है, छलक लगा के जाएंगे। तुरंत बिरजा नदी के तट पे चरा पर गया, रेता इतनी ज्यादा हो गया कि नाव है जमीन में टच हो गया। तीसरे अलौकिक ये करके उन्होंने जब गए जगन्नाथपुरी में पहुंचने के लिए देर हो गया तो एक दो दिन जगन्नाथ पूरा रथ उनके चला ही नहीं। तो फिर जब ही रसिक मुरारी और श्यामानंद प्रभु गए तभी जाके उनका ये रथ चला। एक बार श्यामानंद प्रभु को सपने में आया, महापुरुष सपने में आया कि मेरा सेवा अभी बंद हो गया, मैं ऐसे कहीं पे धान रखने वाला ये होते हैं बाँस से बनाते हैं उसके ऊपर मुझे गिरा के रखा है, तो आप मुझे उद्धार करो। तभी रसिक मुरारी को बोला, वो जगह है तमलुक में एक राजा हुआ था, उनके गुरु थे शक्ति वाले, शक्ति का उपासक एक सन्यासी। वो क्षेत्र के जितना विग्रह हैं वो सभी विग्रह को जला दिया, विष्णु कृष्ण महाप्रभु के जीवी जितने भी विग्रह थे जला दिया था, इतनी बड़ा दुष्ट था वो। तो उसके वो राजा के गुरु थे। इसी प्रकार वैष्णव को बिल्कुल नहीं देख सकते थे। श्यामानंद प्रभु गए अपने दलबल लेकर, भक्तों को लेकर, जब जाके वो जमींदार उस राजा के आंगन में जब जब बैठे तो राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे कोई वैष्णव आए हैं, तो बोला इसे चले जाओ, चले जाने के लिए बोलो। और उनका जो वो गुरु है बोलते हैं उसको जल्दी जल्दी ये जो स्थान में, फिर बोला कि ग्वाला के घर पे जाओ। वो नहीं गए, उसके वो राजा जो है उसके सामने एक बट वृक्ष था, उसे में जाके श्यामानंद प्रभु अपने गणों को लेकर बैठे। और वो उसका गुरु बोला झूठाकुर वैष्णव क्या करते हैं, झूठा खाते हैं, भगवान की झूठन खाते हैं, इसलिए बोलते झूठाकुर वैष्णव। ये बैठा है, ये जो दुर्गा मंडप है ये अपवित्र हो गया, इसके मिट्टी खुदाई करके फेंक दो। और मिट्टी खोदने लगा, उस सन्यासी की, उन सन्यासी मायावादी सन्यासी गुरु की आज्ञा से उन्होंने मिट्टी खोदने लगे। अभी मिट्टी खोदते जा रहा है मिट्टी बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। सुबह से शुरू किया, रात भर मिट्टी हटाया, कोई मिट्टी कम नहीं हो पाया। तो मिट्टी जैसे के तैसे रहे, मिट्टी बाहर लेके फेंकते ही जा रहा है, लेकिन मिट्टी कम नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है उसके लिए अलौकिक शक्ति चाहिए। तो वैष्णव में देखा जाता है, गौरी और वैष्णव जो है ज्यादा कोई अलौकिक शक्ति नहीं दिखाते हैं, शक्ति है लेकिन दिखाते नहीं है। लेकिन श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु और अभिराम ठाकुर, कुछ कुछ लोग थोड़ा शक्ति दिखाए, नहीं तो कोई वैष्णव शक्ति नहीं। तो इसलिए मिट्टी खोते जा रहा है खोते जा रहा है। तो इसी प्रकार जब ऐसे देखा राजा को पास खबर गया तो राजा बड़े भयभीत हो गया और चकित हो गया कि ये क्या बात है, ये भगवान होगा। और वो गुरु जो वो गुरु कुछ नहीं कर पा रहा है, मिट्टी कम नहीं कर पा रहा है, उसका जो शक्ति उपासक जो गुरु था सन्यासी था वो कुछ नहीं कर पाया। तो इसलिए उसमें शरण श्यामानंदपुर की शरण ले ली। श्यामानंदपुर के शरण लिए और शरण दीक्षा लिए तो बोला कि उसको भगाओ। तो मायावादी गुरु जो है उसका बहुत चापलूसी करके बहुत कुछ अच्छा आराम में थे उसको भगा दिया। श्यामानंद के डिसाइपल हो गए वैष्णव हो गए और उनको भगा दिया। भगा दिया तो इसके बाद रसिकानंद प्रभु को बताया कि ये है ये जो महाप्रभु है बहुत आप लोग तमलुक के भी जाएंगे महाप्रभु अभी भी है। ये महाप्रभु बहुत दिव्य शक्ति वाले हैं। ये जब वासुदेव दत्तो तमलुक में आके रहते थे तो उनको जब पता चला कि महाप्रभु छोटा गोपीनाथ में प्रवेश किया और आए नहीं तो उनको जब पता लगा तो बहुत दुखी हो गया। दुखी होकर प्रभु मुझे बताए नहीं, प्रभु चले गए, जिसके लिए मैं उसकी उसी गांव के नाम नरपोता, नरपोता मतलब वो जिंदा समाधि दे रहे थे वासुदेव। दो चार दिन तो बहुत रोया ये किया, फिर भी महाप्रभु कुछ उनको संकेत भी नहीं मिला, महाप्रभु के बातचीत भी नहीं किए तो उन्होंने बोला मैं अभी जिंदा समाधि। महाप्रभु ने ये किया जी के क्या फायदा, वासुदेव घोष ने जिंदा समाधि देने शुरू किया। तो तमलोक में वो है तो उन्हें जिंदा समाधि दे के मिट्टी गड्ढे खोदे जब मिट्टी भर रहे थे तो महाप्रभु सपने में ये उनको आकाशवाणी हो गया कि नहीं मैं तुम्हारा पास आऊंगा। तभी एक विग्रह के रूप में महाप्रभु है छोटे विग्रह है तो वो विग्रह के रूप में आए तो वासुदेव बोला कि ये मेरे और इसमें कोई भिन्न नहीं है, मैं इस विग्रह में हूं। इसी प्रकार मेरे से और ये विग्रह तो अभिन्न मानो। तभी इस विग्रह को उन्होंने पाकर अपने समाधि से उठे, जब अपने जिंदा समाधि दे रहे थे उसे उठा और महाप्रभु की सेवा करने लगे। तमलोक में और विष्णु मंदिर विष्णु मंदिर अर्जुन और कृष्ण के मंदिर बहुत पहले है, 5000 साल पहले के एक मंदिर है जो भगवान युधिष्ठिर महाराज को राशि योग के समय गए थे। ताम्रध्वज राजा उन्होंने वो तो वैष्णव थे, उनकी बेटा जो है उनको सामना किया था, मर गए थे, भगवान गए तो बहुत सजाया था, तब से उनकी बस होकर भगवान उधर रह गए। तो इसलिए 5000 साल की एक मंदिर है अर्जुन और भगवान कृष्ण की। वो मंदिर के विग्रह को वो कुछ नहीं कर पाया, जो शक्ति सन्यासी तो वो मंदिर में वो विग्रह थे और महापुरुष विग्रह को छुपा दिया था। तो रसिक मुरारी को पता चला, श्यामानंद प्रभु आज्ञा दी कि कैसे भी इस विग्रह को आप प्रकट करवाओ। तब श्यामानंद प्रभु बोले तो रसिक मुरारी एक अकेला जिस गांव में है उन्होंने पता लगाया, जाके उस एक पुजारी ब्राह्मण थे वो उसके घर में छुपा हुआ था। तो वो उसी समय गए, उसकी पत्नी पुजारी जो है उनकी पत्नी और उनके पिताजी वो जो है ब्राह्मण पुजारी वो भी नहीं थे, उसकी एक बेटी थी। तो रसिक मुरारी बहुत गिफ्ट लेके गए, उनको बहुत गिफ्ट दिए। गिफ्ट देने के बाद बताया कि एक बात मैं पूछता हूं तो आप जो सही बताना, किसके आपके इधर विग्रह कहाँ पे है। तो एक छोटा सा कुटीर था उसमें से धान रखने वाले एक पात्र थे, बांस से बना होते हैं तो उसके अंदर थे। तो उन्होंने बताया कि किसी को बोलना नहीं है। बोला कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा, आप मुझे दिखाओ। तो उन्होंने जाके दिखा दी और बहुत सारी पैसा उनको बहुत गिफ्ट दिए थे, इसलिए खुश हो गई उनको दिखा दिए और तो देख के अकेले अकेले आ गए। तभी पाषाण्डव लोग थे, तो श्यामानंद प्रभु के पास जाके बताया है मैं महाप्रभु के दर्शन करके आया। तो इसके बाद सभी लोग तैयार होकर श्यामानंद प्रभु और सभी लोग लेकर, वो राजा जो अभी नया नया न्यू डिवोटी वैष्णव बन गया उनको बताया कि सैनिक दे दो, सैनिकों को लेकर कीर्तन मंडली के साथ जाके महाप्रभु को फिर दोबारा प्रतिष्ठित किया, दोबारा प्रतिष्ठित किया। तीसरी प्रकार और भी गोपीनाथ, गोपीनाथ को भी मिलेश्वर के डर से सीढ़ गोपीनाथ है, माधवेंद्रपुरी के समय तो थे, महाप्रभु के समय थे, फिर भी गोपीनाथ लुप्त तो हो गए थे। मार्केट में एक स्थान है उधर लेके देवी के रूप में सिंदूर लगा दिया था, सिंदूर लगा के उधर पूजा कर रहे थे। श्यामानंद प्रभु जब गए ब्रह्मणा में बोला नहीं यहां तो प्रभु गोपीनाथ तो होगा कहां है, तो उन्होंने फास्टिंग करने लगे, प्रभु का दर्शन नहीं होगा तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसे उन्होंने ये कर लिया। तो रात को उन्होंने स्वप्न देखा है श्यामानंद मैं तो इस मार्केट में देवी के रूप में पूजा हो रही, बहुत सिंदूर सिंदूर पोत दिया था उसमें पूरा। तो इसी प्रकार जाके श्यामानंद प्रभु वो लड़ाई हो गया उधर, बोले ये हम लोग देवी बहुत दिन से देवी के रूप में पूजा कर रहे, तो शर्त हो गया, बोला देवी है या कृष्ण है शर्त है, इसको सफाई किया जाएगा, यदि देवी होगा तो हमको जो भी पनिशमेंट आपको देना आप दे दीजिए, कोई उठाने नहीं देगा। फिर भी उठाया, उनको सफाई किए, सफाई करने के बाद देखा मुरलीधारी कृष्ण है, गोपीनाथ जी है। तो इसी प्रकार श्यामानंद प्रभु की अलौकिक लीला, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने वैष्णव बनाए, और वैष्णव बनाकर ये जो राधा श्याम सुंदर मंदिर की प्रकट किए, इसके नीचे गुफा भी मिले, दोबारा भी आए थे उन्होंने, दोबारा भी आए। और इसी प्रकार उन्होंने श्यामानंद प्रभु अभी भी गोपीनाथ में जो पूजा आदि कर रहे हैं उनके हिसाब से ही उनकी उसी उनकी परंपरा के वैष्णव है, गोपी वल्लभपुर अभी भी है, और अभी भी द्वादश महोत्सव होते हैं, और उसमें क्या है 1,00,000 वैष्णव के चरणामृत उसी समय की अभी भी है, लाखों वैष्णव के चरणामृत अभी भी है उधर रखा है गोपी वल्लभपुर में। आप लोग जाना थोड़ा मुश्किल है, कोई इतना थोड़ा डेवलप एरिया नहीं है, बहुत सुंदर है फिर भी ठीक है। और बलराम रास है, और बलराम जी एक बार दो महीने के लिए द्वारिका से आए थे, इसी समय सभी लोग बहुत दुखी थे, इनके संतुष्ट करने के लिए 2 महीना चैत्र वैशाख महीना रहकर सभी के साथ रास किए थे। आप लोग अभी भी उनके निशान है, रामघाट में जाएंगे, उन क्या बोलते ईचा दाव जी, ईचा दाव जी बोला खींचा था, यमुना जी को खींच लिए थे, इसलिए ब्रजभाषा में बोलते ईचा दाव जी। रामघाट अभी भी है, जय जय रामघाट, जय जय रामघाट रोहिणी नंदन। तो ये रामघाट के जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में बलराम जी के राज विहार करते थे, मधु पीते थे, बारूनी पीते थे, बारूनी पीकर 2 महीना तक इस भूमि में राज विहार किया। बलराम बहुत कृपालु है, दयालु होते हैं, कृष्ण से ज्यादा वो मारपीट झगड़ा करने ये सब नहीं चाहते थे। ब्रजवासी से भगवान नहीं आए, लेकिन बलराम जी आए, बलराम जी आए, सबसे बात किए, सबसे मिले, नंद यशोदा सभी जो इतने गोप है उनके सखा है, सखी लोग आके प्रेम की तीव्रता इतना ज्यादा हो जाती है कि जैसे राधारानी आदि कोई गोपी लोग बलराम से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब मर्यादा प्रेम की जो उच्च स्थिति धरातल है मर्यादा नहीं रहता है, पूरा कृष्ण से बात किया, बलराम जी से बात किए, उनसे पूछे सभी बात, कृष्ण याद करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या भूल गए क्या, इसी बारे में पूछते सभी रोते हैं। इसी प्रकार बहुत ही सुंदर आप लोग भागवत में देख सकते हैं भगवान बलराम की राजविहार की लीला, और हम योग्य भी नहीं राजविहार की लीलाओं को बोलने के लिए। तो इस प्रकार आज की हम अपने वाणी को विराम देते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय निताय गौर सुंदर की, जय श्यामानंद प्रभु की, वंशीवदन ठाकुर की। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमती गौर भक्तवृंद की। ताई गो शीतनाथ प्रमंदे हरि हरि बोल।